सरस्वती देवी पर आवश्यक जानकारी। सरस्वती देवी क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है। सरस्वती देवी, जैसा कि सब जानते हैं, कि ज्ञान और बुद्धि की देवी है। तो अब इसे समझना जरूरी है कि ज्ञान और बुद्धि होती क्या है। ज्ञान और बुद्धि वो होती है जो आपके अंदर है, जिसका उपयोग आप कर रहे हैं और जिसमें आप पारंगत हैं या एक्सपर्ट हैं, या कह सकते हैं स्किल्ड हैं, जिसकी क्षमता आपके अंदर है। यह सारा ज्ञान और बुद्धि सरस्वती देवी का प्रतीक है। इसके अलावा जो आपकी मानसिकता होती है, इस पर भी सरस्वती देवी का नियंत्रण है या उनकी प्रतीक है कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा यह भी जानकारी देना जरूरी है कि ज्यादातर इसे किताबी ज्ञान या किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि जो स्कूल या कॉलेज के एजुकेशन से ही जोड़ दिया जाता है सरस्वती देवी को, जबकि सरस्वती देवी हर तरह के ज्ञान की देवी है। जितने परफॉर्मिंग आर्ट होते हैं, किताबी स्कूली ज्ञान तो है ही, लेकिन जितने परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, जितने खेल होती है, जहाँ भी टेक्निकल शब्द आ जाता है कि टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल इंफॉर्मेशन और जितनी भी तकनीकी चीज है। आजकल के दौर पे देखिए, जैसे कंप्यूटर का हर क्षेत्र में दबदबा है, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी क्षेत्र बिना ज्ञान के या बिना कंप्यूटर के चल सकता है। तो हर जगह सरस्वती देवी का प्रतीक है। जो विशेष जो विषय है सरस्वती देवी के लिए, वो मैं कह सकता हूँ कि ज्ञान बुद्धि तो है। प्रैक्टिकल रूप से हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी तकनीकी चीजें हैं वो इनके अंतर्गत आती हैं, जितने भी अकाउंट्स के कार्य होते हैं ये इनके अंतर्गत आते हैं, वाणी से संबंधित कार्य होते हैं जिसमें वाणी से संबंधित कार्य होता है, जैसे अधिवक्ता या वकील होते हैं, उनका वाणी से भी कार्य होता है। वो कागज में कितनी भी चीजें लिख लें या कर लें, लेकिन अंतिम जो कार्य उनका होता है वो वाणी से ही होता है। वो कैसे अपना केस लड़ते हैं, ये सब उनके बोलने पर निर्भर करता है और उनके ज्ञान पर निर्भर करता है कि उनकी ज्ञान की सीमा क्या है। इसके अतिरिक्त जितने भी कंसल्टेंट होते हैं, सलाहकार होते हैं, उनके पास भी काफी ज्ञान होता है। और जितने भी एक्सपर्ट की श्रेणी में चीजें कही जाती हैं, आप एक्सपर्ट कई तरीके से बन सकते हैं। एकेडमिक डिग्री लेकर भी बन सकते हैं, एक्सपीरियंस से भी बन सकते हैं, कार्य कर करके भी बन सकते हैं, और समय समय जैसे जैसे समय जाता जाता है वैसे भी ज्ञान लोगों का बढ़ता जाता है, तो उस अनुसार भी लोग एक्सपर्ट बनते हैं। तो यह सारी श्रेणियां सरस्वती देवी की कृपा से ही आती है। हो सकता है आप पैसे आपके पास अधिक हो, या फिर कह सकते हैं कि आपके पास सुख सुविधाएं अधिक हो, लेकिन आपके पास ज्ञान भी अधिक होगा, इसका कोई पक्का नहीं कह सकते हम। ज्ञान भी अधिक होगा आपके ऊपर। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमें अपने ही प्रयासों से मिलती है। अगर हम किसी चीज पर प्रयास कर रहे हैं तो ही हमें ज्ञान मिल रहा है, बिना प्रयास के ज्ञान नहीं मिलता। और बिना सतत प्रयास के व्यक्ति पारंगत किसी चीज पे नहीं हो सकता। ज्ञान की सबसे विशेष बात यह है कि ज्ञान हमेशा मेहनत चाहता है। बिना मेहनत के ज्ञान नहीं मिलता, और मेहनत यह कंटिन्यू करनी पड़ती है। अगर कोई आप काम करते हैं तो आपको उसमें धन प्राप्ति होती है, ये लाभ की प्राप्ति होती है, तो आप उस कार्य को करते हैं। लेकिन ज्ञान की विशेषता ये है कि ज्ञान जब आप अर्जित करते हैं या ज्ञान अपना बढ़ाते हैं, तो ज्ञान बढ़ाने से प्रैक्टिकली आपके हाथ में कोई चीजों का लाभ आपको त्वरित नहीं होता। ज्ञान ऐसी चीज है जिसका लाभ आपको समय अनुसार मिलता है। जब आपका समय आता है, जब आप उस ज्ञान का उपयोग करते हैं, तब उसका लाभ मिलता है। लेकिन जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं, तत्कालिक रूप से आपको उसका कोई लाभ प्रतीक नहीं होता। जैसे आप कोई चीज सीखते हैं, या स्कूल या कॉलेज में जो एजुकेशन लेते हैं, या प्रैक्टिकल लाइफ में जो एजुकेशन लेते हैं, उसका क्या उपयोग है, या वह क्यों लिया जा रहा है, या भविष्य में उसका उपयोग होगा भी कि नहीं होगा, यह हमें उस समय पता नहीं होता। भले ही हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो ज्ञान और बुद्धि का यह एक कह सकते हैं कि विशेषता भी है, या कह सकते हैं एक सिक्रेसी भी है, कि ज्ञान का क्या उपयोग होगा वह हमें ज्ञान अर्जन के समय में नहीं समझ आता। इसलिए हमें जरूरी है कि हम किस तरीके का ज्ञान ले रहे हैं और किस तरीके का ज्ञान हमारे लिए जरूरी है, यह हम पहले से विचार करें। सरस्वती देवी का एक प्रतीक यह है कि वो स्वतंत्र है। जिस प्रकार ज्ञान स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहा भी जाता है, कि ज्ञानवान या बुद्धिवान व्यक्ति के लिए हर क्षेत्र अपना होता है, हर राज्य अपना होता है और हर लोग अपने होते हैं। ज्ञानवान और बुद्धिवान व्यक्ति हर क्षेत्र में जाकर अपना नाम कमा सकता है और हर व्यक्ति उस पर अपना प्रभाव दे सकता है। इसलिए ज्ञान और ज्ञान की स्वतंत्रता बहुत अधिक होती है और बिना ज्ञान के अन्य चीजों की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना ज्ञान के अन्य चीजों की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसका अर्थ यह है, मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन अब इस पैसों का उपयोग आप कैसे करेंगे? उपयोग भी आपने कर लिया, लेकिन उसका आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, ये सब आपके ज्ञान पे निर्भर करता है। देखिए, पैसे बहुत लोगों के पास हैं, लेकिन वो उसका उपयोग कैसे करते हैं? फिजूल खर्ची भी होती है पैसे की, अच्छे से भी खर्च होता है, लेकिन वह चीज़ हमें कितना काम आएगी, कितनी ज़रूरी है हमारे लिए? इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है? भोजन के रूप में, कपड़ों के रूप में और सुख सुविधाओं के रूप में, कि हमें किस तरीके की सुख सुविधाएं चाहिए और किस समय क्या जरूरत है, यह भी ज्ञान होना चाहिए। तो यह सारी चीजें सरस्वती देवी का प्रतीक है। इसमें एक विशेष जानकारी और मैं देना चाहता हूँ कि जो प्रेम होता है, प्रेम में भी जो प्लूटोनिक लव होता है कह सकते हैं जिसे, वह उसमें भी सरस्वती देवी की कृपा होती ही है। इसलिए हमें थोड़ा विस्तार से इस चीजों को समझना होगा। अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से बात करें तो सरस्वती देवी पांचवें भाव पर स्थित होती है। पंचम भाव जो ज्योतिष में कुंडली में होता है, वहां पर सरस्वती देवी का वास होता है। और अगर हम अपनी हथेली में बात करें तो हथेली में जो हमारा समझ लीजिए जो कनिष्ठा उंगली होती है, जो लिटिल फिंगर होता है, उसके जो नीचे के पूरे नीचे कलाई तक का क्षेत्र होता है, एक तरीके से कह सकते हैं हथेली में जो कनिष्ठा उंगली से नीचे तक का क्षेत्र होता है, अगर जो ये कह सकते हैं कि जो हस्तरेखा शास्त्र जानकारी रखते हैं, तो बुध क्षेत्र, चंद्रमा का क्षेत्र और नीचे चले जाएंगे तो केतु का क्षेत्र तक, जितना भी क्षेत्र होता है सरस्वती का क्षेत्र माना जाता है, ये कह सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगर हमारे हथेली का वर्टिकल अगर हम समझना चाहें तो हमारे हथेली के जो आगे वाले भाग होते हैं, जैसे अंगुलियां होती हैं, तो अंगुलियों पे सरस्वती देवी का वास होता है, ये कह सकते हैं हम। देखिए, हमारे पास हाथ है, हथेली भी है, लेकिन हाथ और हथेली का क्या उपयोग है, आपने कभी सोचा होगा? इसका कोई उपयोग नहीं है अगर हमारे पास उंगली ना हो, इसका कोई उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज है कि ज्ञान आपके पास है, ज्ञान कैसे उपयोग करना है और ज्ञान कब उपयोग करना है, यही जानकारी जो होती है, यहाँ पर सरस्वती देवी का प्रतीक आ जाता है। तो जो ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता है और ज्ञान कब उपयोग करना है, यह जो क्षमता होती है, यह सरस्वती देवी का प्रतीक होता है। तो इसलिए ज्योतिष में इसे पांचवा भाव या पंचम भाव बताया गया है। ध्यान रखिएगा, मैंने पांचवा भाव कहा है, पांचवी राशि या पांचवा कोई और चीजें नहीं कही है। तो ज्योतिष में जो पंचम भाव होता है, वह ज्योतिष में सरस्वती देवी का स्थायी भाव कहा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पांचवा भाव स्थायी भाव भी होता है, तो पांचवें भाव से जितनी चीजें मिलती हैं वो भी स्थिर होती हैं। जैसे प्रेम होता है वो भी स्थिर होता है, वैसे ही ज्ञान और बुद्धि जो होती है वो भी स्थायी मानी जाती है। जैसे कि आपके पास जो ज्ञान आ गया वो तो आ गया, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो वही चीजें हैं, मानसिकता भी काफी हद तक पांचवें भाव से देखी जा सकती है। और सरस्वती देवी जो होती हैं वो वायु तत्व प्रधान होती हैं और उनमें अग्नि तत्व भी होता है। तो वायु और अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व सरस्वती देवी में है। अगर हम ज्योतिषीय तकनीकी चीजों की बात करें तो जो D5 होता है, वर्ग कुंडली 5, पंचमांश कुंडली जो होती है, और D24 चतुर्विशमांश कुंडली जो होती है, यह दो कुंडलियों से सरस्वती योग या सरस्वती की कितनी कृपा हमारे ऊपर है यह हम जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अगर मैं शॉर्ट में सरस्वती योग के बारे में बता दूं, तो जैसा मैंने पहले बताया कि D5 और D24 में हमें इसे देखना है, तो कुछ सरस्वती योग के कुछ अलग अलग प्रभाव मैं बता देता हूँ। किताबों में या ज्योतिषी किताबों में कौन से योग लिखे हुए हैं वो मुझे नहीं पता, मैं जो प्रैक्टिकल में उपयोग आएंगे वो योग बता देता हूँ। जैसे गुरु का 10वें भाव में होना, या गुरु का 10वें भाव में दृष्टि होना या प्रभाव होना, 10वें भाव के स्वामी के साथ गुरु का कोई संपर्क होना, यह सारी चीजें सरस्वती योग में आ जाती हैं। इस योग का प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति मल्टी स्किल्ड होता है, मतलब कई तरह की कलाएं होती हैं, या अगर प्रैक्टिकली उसे समझना चाहें तो व्यक्ति अलग अलग कार्य कर सकता है। मतलब व्यक्ति के पास अकाउंटिंग का भी नॉलेज हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के पास और भी चीजों का नॉलेज हो सकता है। मतलब दो तीन, मतलब जैसे व्यक्ति म्यूजिक भी जानता है, अकाउंटिंग भी जानता है, ये दो तरह की कलाएं हो गई, कंप्यूटर भी चलाना जानता है, तो तीन तरह की कलाएं हो गई। तो अलग अलग कलाओं में पारंगत होगा वो, या कह सकते हैं उसका उपयोग कर रहा होगा, प्रोफेशनली कह सकते हैं एक तरीके से। तो यह 10वें भाव के गुरु या 10वें भाव से गुरु का संपर्क होने से यह प्रभाव आता है। ध्यान रखिए, लग्न कुंडली के अतिरिक्त हमें D5 और D24 में भी इन चीजों को देखना है। या ये कह सकते हैं कि लग्न कुंडली आप देखें ना देखें, लेकिन D5 और D24 में ये चीजें देखनी जरूरी है। और सरस्वती योग में हम ये कह सकते हैं कि जैसा गुरु का 10वें भाव में प्रभाव, वैसे ही बुध का 10वें भाव में अगर प्रभाव हो तो भी इस योग को माना जाता है। लेकिन बुध के 10वें भाव में प्रभाव होने से थोड़ा सा फर्क ये आ जाएगा कि बुध का जो 10वें भाव में प्रभाव होता है वो मल्टी स्किल्ड तो व्यक्ति को बनाता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं जैसे वकालत का बिजनेस होता है, ये इसका अच्छा उदाहरण है। जैसे एक वकील एक ही कोर्ट में जाता है, एक ही कानून, मतलब एक ही तरीके का कानून जानता है, लेकिन वो केसेस कई सारे लड़ता है। तो जहां पर भी जिस भी व्यवसाय में एक कार्य नहीं किया जाता, ये कह सकते हैं ज्यादातर जितने बिजनेस या प्रोफेशन है वह सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो बुध का 10वें भाव में प्रभाव होगा तो व्यक्ति प्रोफेशन नल होता है, ये कह सकते हैं व्यक्ति के प्रोफेशनल कार्य करता है व्यक्ति, और टेक्निकल कार्य करता है व्यक्ति, ये कह सकते हैं हम। तकनीकी जो कार्य होते हैं, टेक्निकल जो सपोर्ट होता है, टेक्निकल कंसल्टेंसी होती है, ये सब बुध के 10वें भाव पे प्रभाव के कारण होती है। इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि जैसे मंगल बुध का जो योग होता है, ध्यान रखिए D5 और D24 में ये देखना है हमें। हो सकता है कई ऐप में या सॉफ्टवेयर में आपको D5 ना मिले, लेकिन D24 ही आप देख लीजिए, सिर्फ उसी उसमें ही देख लेने से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इस पे हमें ध्यान रखना होगा कि योग कितना मजबूत हो रहा है कि कितना वीक बन रहा है। कई सारी चीजें घुमा फिरा के इनडायरेक्ट तरीके से योग बनाने से वो वीक योग होगा, जितना डायरेक्ट योग बनेगा उतना ज्यादा बलवान योग बनेगा। इसके अतिरिक्त उस ग्रह के भी बल देखना पड़ेगा कि उस ग्रह का बल कितना है, तो ये भी चीजें देखनी होती हैं। तो मंगल बुध का जो योग होता है यह तीक्ष्ण बुद्धि योग होता है। तीक्ष्ण बुद्धि योग का मतलब ये होता है कि व्यक्ति चालाक होता है, ये कह सकते हैं कि जो बोलते हैं कि इंटेलिजेंट होता है, और अपने बुद्धि का समय पर उपयोग करने की क्षमता उस पे होती है मंगल बुध के योग होने से। इसके अतिरिक्त सूर्य बुध का योग, जैसे जिसे बुधादित्य योग के नाम से भी जाना जाता है, यह भी बुद्धि का योग होता है। ये सब हमें D24 और D5 में देखना है। तो बुधादित्य योग या सूर्य बुध का जो योग होता है, या आपसी कैसा भी संपर्क हो जाए, जैसे सूर्य कन्या राशि में बैठा हो और बुध सिंह राशि में बैठा हो, तो इस समय में भी ये योग बन जाएगा। अगर D24 में सूर्य बुध एक दूसरे के आमने सामने भी आ सकते हैं, तो इस तरीके से भी हो, दृष्टि संबंध भी हो, तो ये भी चीजें भी आ जाएंगी। या एक भाव में युति करके बैठे हों, ये भी चीजें आ जाएंगी। तो जितने भी योग हैं अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो सूर्य बुध के योग से भी बुद्धि आती है। इसके अतिरिक्त बुध गुरु का एक योग होता है, या बुध गुरु का संपर्क होता है, ये असमंजस योग कह सकते हैं। या ऐसे व्यक्ति के अंदर असमंजस या कंफ्यूजन अधिक होता है। जरूरी नहीं इस योग से आप असमंजस में ही रहें हमेशा। असमंजस का मतलब ये होता है कि या तो व्यक्ति के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं तो वह असमंजस में होता है, या बहुत कम ऑप्शन होते हैं तो उसको इनसिक्योरिटी होती है कि कौन सा ऑप्शन वो करे। तो दोनों तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप उसको इन्वेस्ट कहाँ करें, इसी का असमंजस है आपके ऊपर। वैसे ही आपके पास पैसे ही नहीं है तो पैसे कहाँ से लाएं और कहाँ से पैसे बनाएं, इसका भी असमंजस हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा स्टेबल होता है, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि असमंजस में रहता है कि कौन सा कार्य उसके लिए बेहतर है, कौन सा कार्य बेहतर नहीं है, और क्या वो सही कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, और ऐसे कई तरीके की असमंजस कह सकते हैं। या उसे कह सकते हैं कि अपने काम पे 100% भरोसा नहीं होता, या ये कह सकते हैं कि वो अपना कार्य 100% भरोसा करके या 100% एफर्ट के साथ नहीं करता। ये जितने भी चीजें आती हैं ये बुध गुरु के योग या आपसी संपर्क से आती हैं, और खासकर D24 में इसे देखना ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके के और भी सरस्वती योग होते हैं, जैसे कि आपके एक सामान्य योग मैं बता देता हूँ कि जैसे पंचम भाव का स्वामी D24 में अगर उच्च का बैठा हो, या बहुत अधिक बलवान हो गया हो पंचम भाव का स्वामी, या ये कह सकते हैं कि लग्न कुंडली में जो पंचम भाव का स्वामी है वह D24 में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हो, ये भी कह सकते हैं। उसके अलावा D24, ध्यान रखिएगा D24 चतुर्विश्वांश, इस कुंडली का जो पांचवें भाव का स्वामी है वो मजबूत तो है लेकिन उसकी दशा भी चल रही है। तो कोई भी सरस्वती योग ना भी बन रहा हो तो पांचवें भाव का स्वामी अगर बलवान है D24 में और उसकी दशा चल रही है, दशा का अर्थ है महादशा अंतरदशा। प्रत्यंतर दशा इसलिए मैंने शामिल नहीं की क्योंकि प्रत्यंतर दशा काफी छोटे समय की होती है। तो अंतर दशा पांचवें भाव या पांचवें भाव में बैठे हुए ग्रह की अगर आ जाए, D24 में जो पांचवें भाव में बैठा हो या पांचवें भाव का स्वामी हो उसकी दशा आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय व्यक्ति के अंदर ज्ञान अधिक आता है या ज्ञान अधिक प्राप्ति की संभावना होती है। मान लीजिए पांचवें भाव का स्वामी शनि है, आपकी बुध की महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है तो पांचवें भाव से बुध का कोई संबंध नहीं आ रहा है आपकी D24 कुंडली में, लेकिन बुध की महादशा के अंतिम चरण में शनि की अंतर दशा आएगी। जैसे ही शनि की अंतर दशा आई आपके ज्ञान के चक्षु खुल गए, ये कह सकते हैं। आपका ज्ञान मतलब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आपको ज्ञान हो गया आपको कैरियर में या अपने लाइफ में किस तरफ जाना है उसका ज्ञान मिल गया, तो ये भी चीजें उसमें आ जाती हैं। इसी तरीके से और भी चीजें देखी गई हैं। जब आप इसे प्रैक्टिकली जब आप अपनी आप कुंडली ओपन करके आप D24 ओपन करके आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से ये सारी चीजें समझी जा सकती है। कोई खास विशेष ज्योतिष का आपको ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ D24 खोलना है, उसमें पांचवें भाव का स्वामी और पांचवें भाव में बैठे हुए ग्रह देखने हैं और अपनी दशाएं देखनी है, उस हिसाब से आप चीजें देख सकते हैं। तो ये चीजें हमें देखनी है। अब इससे संबंधित कोई अगर आपके प्रश्न हो या मेरे वीडियो में कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो या आप उसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो उससे संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं। मेरे वीडियो पे दिए गए कमेंट का मैं 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करता ही हूँ। और अगर आपको विशेष वार्ता करनी है या कोई चर्चा करनी है या चैट करनी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर कमेंट में आपको क्विक रिप्लाई नहीं मिल रहा या क्विक रिप्लाई चाहिए आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और वैसे ईमेल भी कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। कोशिश करें डायरेक्ट फ़ोन ना करें, अपॉइंटमेंट लेके फ़ोन कर सकते हैं आप। और आपकी कुंडली में अगर सरस्वती योग है और इसका फल आपको नहीं मिल रहा है, या आपको इसमें कुंडली विश्लेषण करवाना है, तो आप करवा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की कुंडली में सरस्वती योग तो होता है, लेकिन अभी तक उसकी ज़िंदगी में उसका फल नहीं मिलता उसको, तो हो सकता है आगे मिलने वाला हो। तो फल कब मिलने वाला है ये भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ों का फल हमें 20 साल 30 साल की उम्र तक मिल जाए, कभी कभी 40 या 50 साल की उम्र में भी कोई कुंडली में योग होते हैं जिसका फल मिलता है। ये भी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो डीएम सिस्टम ऑफ इन्फिनिट एस्ट्रोलॉजी में आप ये मेरा सरस्वती देवी पर वीडियो देख रहे थे, जिसमें मैंने सरस्वती देवी क्या है उन पर भी जानकारी दी, ज्योतिषीय पहलू भी इसमें जानकारी दी, और सरस्वती योग के बारे में भी जानकारी दी, कुंडली में इसे कैसे देखते हैं इसके बारे में भी मैंने जानकारियाँ दी। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, और कुछ जो ज्योतिषीय मैंने ज्ञान दिया इस पे वो भी काफ़ी उपयोगी होगा। ध्यान रखिए मेरे चैनल या मेरे पेज पे आप आते हैं तो कभी भी आप किताब से नकल किया हुआ कोई योग इसमें देखने मिलेगा आप यह मत समझिए। हालांकि मैंने साढ़ेसाती मांगलिक योग और इस पर भी वीडियो बनाए हैं जो जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। साढ़ेसाती पर वीडियो इसी महीने आपको मिल जाएगा और मांगलिक योग पर भी वीडियो बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, कोशिश करूंगा इसी महीने आपको मिल जाए, तो उस पर भी विशेष मैंने जानकारी दी है। लेकिन इसके अतिरिक्त ज़्यादातर जो आपको इसमें जानकारी मिलेगी वो किताबों से बाहर मिलेगी, इसलिए मेरे वीडियो को देखने के बाद या मेरे वीडियो में जानकारी लेने के बाद आप उसे किताब या इंटरनेट पर सर्च मत करिए, क्योंकि हो सकता है वो ना मिले नहीं मिलेगा उस पर। अगर वो मिलता भी है तो वो मेरे पेज या मेरे वेबसाइट पर ही मिलेगा। तो इसलिए जो भी मेरे वीडियो में ज्ञान दिया जाता है या जानकारी दी जाती है, आप उसे एक नया ज्ञान समझ के ही ग्रहण करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मेरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।